नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी। कांग्रेस की ओर से अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नहीं उतारा उम्मीदवार। कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा का चयन तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना को लेकर डिजिटल उपकरणों का किया शुभारंभ। दो चरणों में होगी जनगणना। राज्य सरकार ने हटाया डिजास्टर एक्ट। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का रास्ता हुआ साफ। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार ने आपदा एक्ट का किया दुरुपयोग। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने आज प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने विधानसभा सचिव के समक्ष नामांकन पत्र भरा और इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। प्रदेश से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और इस सीट को भरने के लिए ये चुनाव करवाया जा रहा है। नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 9 मार्च को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है, जबकि मतदान की तारीख 16 मार्च को निर्धारित है। विपक्षी दल भाजपा ने इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा का चयन तय माना जा रहा है। इस बीच पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग शर्मा को राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अनुराग शर्मा कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें टिकट मिलने से सभी कार्यकर्ता खुश हैं।
माननीय श्री खड़गे जी का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनकर वो राज्यसभा में भेज रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं ये सोचा था कि हम कभी राज्यसभा की सीट के लिए जाएंगे। और ये अभी जो संगठन सृजन हुआ उसके माध्यम से ये जिला कांग्रेस कमेटी के कांगड़ा के अध्यक्ष बने। पीछे संगठन से काफी सालों से जुड़े हुए थे। सब लोगों से चर्चा करने के बाद इनका नाम घोषित किया गया। जब एक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो उससे हिमाचल प्रदेश में जितने और कार्यकर्ताओं की सोच में परिवर्तन आता है और वो जीवन के जब कांग्रेस पार्टी का कार्य करते हैं तो उनके मन में एक विचार आएगा कि हम भी कभी विधायक और राज्यसभा के सदस्य बन सकते।
भाजपा द्वारा उम्मीदवार न उतारने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 निष्ठावान विधायक हैं। ऐसे में यदि भाजपा अपना उम्मीदवार उतारती तो उसकी हार तय थी।
भाजपा अगर कैंडिडेट देती तो भी उनको हार का मुंह देखना पड़ना था। जो 40 जो विधायक है वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं वो कमिटेड है, वो बिकने वाले नहीं है। उनकी एक नैतिकता है, जिनकी नैतिकता नहीं थी वो बिक चुके थे, इसलिए हमें इस बार कोई डर नहीं था।
अनुराग शर्मा ने कहा कि वे हर मंच पर प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे राज्यसभा में RDG और मनरेगा जैसे मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाएंगे।
मैं हिमाचल के मुद्दों को प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर जहां भी मुझे मौका मिलेगा मैं पूरी हिमाचल की आवाज को उठाऊंगा। हिमाचल की आवाज को पूरे राज्यसभा में पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा। ये आगे के लिए भी संकेत है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बड़ा है, संगठन बड़ा है, ना कि नेता MLA मंत्री बड़े नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 4 डिजिटल उपकरणों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2027 की जनगणना के लिए महिलाओं और पुरुषों के प्रतीक शुभंकर, प्रगति और विकास का औपचारिक अनावरण किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र ने देश भर में गणना कार्यों को सुगम बनाने के लिए ये उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 16 जून को जनगणना कराने की घोषणा की थी। मंत्रालय ने कहा कि जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी और स्वगणना का विकल्प भी रहेगा। इसके अंतर्गत घर घर जाकर सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डेटा एकत्र किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए देश भर में 30 लाख से अधिक गणनाकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य जनगणना अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। प्रदेश में डिजास्टर एक्ट के हटने के साथ ही पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने डिजास्टर एक्ट को हटाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पिछले वर्ष 8 अक्टूबर को डिजास्टर एक्ट लागू किया था, जिसके चलते पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को भी टाल दिया गया था। राज्य सरकार ने प्रदेश के अधिकांश भागों में कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद डिजास्टर एक्ट को हटाने का निर्णय लिया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 6 महीने बाद राज्य सरकार द्वारा डिजास्टर एक्ट हटाए जाने के निर्णय पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मंडी में अपने 3 साल के कार्यकाल पर आयोजित कार्यक्रम में 10 करोड़ रुपए खर्च किए और राहत कार्यों को अनदेखा किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि 8 महीने बाद भी राज्य के अनेक हिस्सों में सड़कों पर मलबा पड़ा है और सैकड़ों रूट बंद पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों को टालने के लिए ही आपदा एक्ट लागू किया, क्योंकि सरकार को अपनी नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाने में डर लग रहा है। चंबा जिले में पंचायती राज चुनावों को लेकर जिले के 18 जिला परिषद वार्डों की परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें कई पंचायतों के लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थीं, जिन पर फैसला लेकर अंतिम आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले के 18 जिला परिषद वार्डों की जनसंख्या 4,79,250 है। उन्होंने बताया कि पंचायत समितियों व पंचायतों का परिसीमन पहले ही कर दिया गया है और 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा।
जिला चंबा में जो हमारे जिला परिषद के वार्ड्स हैं, उनका परिसीमन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। पंचायत समिति का और पंचायतों का ये प्रोसेस पहले ही कंप्लीट हो गया था। इस समय पे जो नई ग्राम पंचायतें विभाजित की गई हैं, उनका प्रोसेस चल रहा है, जिसमें 3 दिन के बाद हमारी तरफ से फाइनल रिपोर्ट स्टेट को सबमिट होगी और एक बार जब उनकी फाइनल नोटिफिकेशन आ जाती है तो उनका जो परिसीमन है वो कंसर्न BDO अपने लेवल पे कर, जो आपत्तियां आई है उन पर निर्णय लिया गया है और फाइनल नोटिफिकेशन उसी के बेसिस पे इशू हुआ है। जब एक बार ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो जो रिजर्वेशन रोस्टर हमें 31 मार्च से पहले निकालना है उसको जारी किया जाएगा।
राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि केंद्र सरकार के नीतिगत सुधारों से भारत का व्यावसायिक माहौल बदल गया है और पंजीकृत कंपनियों की संख्या में पिछले 5 वर्षों में लगभग 27% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों ने देश में उद्यमिता व निवेश को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की व्यवसाय अनुकूल नीतियों से हिमाचल के युवाओं को भी नए अवसर मिल रहे हैं। कांगड़ा जिला प्रशासन ने जिले के ट्रैकिंग स्थलों पर दिन के समय ट्रैकिंग करने की अनुमति दे दी है। पिछले वर्ष दिसंबर के महीने से भारी बर्फबारी को देखते हुए ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई थी। कांगड़ा की अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पी बेक्टा ने बताया कि जिले के सभी स्थानों पर अब मौसम साफ हो गया है और बर्फ पिघल चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने ट्रैकिंग गतिविधियां फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिगत रात के समय ट्रैकिंग पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
मौसम खुल गया है, बर्फ भी पिघल गई है, इसलिए डे टाइम ट्रैकिंग अलाउ की गई है। इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि नाइट टाइम में जो ट्रैकिंग है वो फिलहाल के लिए अलाउड नहीं है। इस तरह से हमारे नॉलेज में लगभग 8 से 10 हादसे हुए हैं। एक ट्रैकर तो अभी तक लापता है, उसमें बाकी हमने रेस्क्यू कर लिए हैं। लोगों से यही अपील है कि जब भी आप ट्रैकिंग करने जाते हैं तो एक तो जहां आप स्टे कर रहे हैं उन लोगों को बताएं, दूसरा ट्रेन्ड लोगों को साथ ले जाएं। हमारे पास माउंटेन ट्रेनिंग में काफी दक्ष लोग हैं, उनके साथ ही जाएं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी। कांग्रेस की ओर से अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नहीं उतारा उम्मीदवार, कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा का चयन तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना को लेकर डिजिटल उपकरणों का किया शुभारंभ। 2 चरणों में होगी जनगणना। राज्य सरकार ने हटाया डिजास्टर एक्ट। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का रास्ता हुआ साफ। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार ने आपदा एक्ट का किया दुरुपयोग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।